के स्टाफ से और एक बार मंगलाचरण करते हैं, कार्यक्रम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। तो शिक्षाष्टकम से हम लोग तीसरे श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। पिछले बार हम लोगों ने त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णु, इन दो चीज़ों पर मतलब स्वयं को मार्ग पर पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानना और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना, ये दो बहुत ही विशेष गुण हैं भक्तों के जीवन के लिए। और इसको बताया गया है, कविराज गोस्वामी बताते हैं कि इसको भक्तों को गले में कंठाहार बनाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के अंदर ये चार गुण हैं जिसमें वो अपने को दीनहीन मानता है और तृण से भी अधिक अपने को नीच मानता है और हर प्रकार की विपदा को सहन करता है, क्योंकि भक्ति में हमारे ऊपर ऐसा नहीं है कि माला पकड़ने के बाद हमारे रास्ते सुगम हो जाएंगे और फूल बरसने लगेंगे, सब लोग पलके बिछाए रहेंगे, है ना, सब कुछ हमारे हिसाब से होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं। कई बार तो लोगों का कहना है कि भक्ति में आने के बाद तो परीक्षाएँ ज़्यादा होती हैं, तो परीक्षाएं खूब होंगी और ये परीक्षाएं, ये वही सब कलेश हैं जो इस भौतिक प्रकृति के द्वारा हर जीव को मिलते हैं, लेकिन भक्तों के लिए ये थोड़े दूसरे टाइप से होते हैं। समस्याएं उसी तरह की होती हैं, आदि भौतिक आध्यात्मिक और दैविक कलेश, लेकिन भक्तों के लिए किस तरह होते हैं कि ये सब भगवान की योजनाओं का एक रूप ले लेते हैं। और फिर जो प्रारब्ध थे, जो एक भौतिकतावादी व्यक्ति को जिस प्रकार के प्रारब्ध मिलने थे, भक्तों के लिए अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि वो भगवान के नामों को लेकर उनकी सेवाओं में रत रहकर अपने सभी प्रारब्ध को हल्का कर लेता है, कम कर देता है, उनके कष्ट मिलने वाले कष्टों को कम कर देता है। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, भक्तों को आगे बढ़ाने के लिए या उनके शुद्धिकरण, तेजी से शुद्धिकरण के लिए, या जो उनके प्रारब्ध है जल्द से जल्द उनको देकर उनके कष्टों को समाप्त कर उनकी सहन शक्ति को चेक करना, उनकी ना इन विनम्रता को चेक करते हैं कि मेरा भक्त जो है कितना विनम्र हुआ। जैसे एक भक्त का वर्णन आता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो जिन्होंने फास्ट रखा था लगभग 40-44 दिन, रंती देव। तो जब फास्ट खोलने की बात आई, फास्ट खोलना था, तो उस समय देवताओं ने परीक्षा ली, एक कबूतर आके बैठ गया है ना। उसने कहा जी मुझे कुछ खाने को दो, उसको खाने के लिए दिया, ऐसा कुछ था। पक्षी उसके मारना चाह रहा था दूसरा, तो उसने कहा भी तुम मेरे भोजन को क्यों बचा रहे हो। कहते आप जो हैं इसको नहीं मार सकते क्योंकि मेरी शरण में आ गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे इसकी जगह उतना मांस दे दीजिए अपना, अगर आप इसकी रक्षा ही करना चाहते हैं। तो उस भक्त ने क्या किया, अपने शरीर से तोल कर मांस देने की कोशिश करी कबूतर। लेकिन जितना जितना मांस चढ़ाते थे कबूतर का वेट भी बढ़ता जाता था। वो और मांस निकाला और दिया और पूरे शरीर का मांस निकाल दिया। वो हल्का ही नहीं हो तो भारी होता गया। तो बाद में पता चला देवता लोग उसकी परीक्षा ले रहे थे। लेकिन एक भक्त की विनम्रता का यहाँ पर प्रदर्शन होता है कि वो किसी भी हद तक जाकर जो है सेवा करना या दूसरे की रक्षा करना या अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करता है। तो देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए। उसी तरह भक्तों के जीवन में भी इस प्रकार की समस्याएं, उलझने, संकट, डिस्टर्बेंसेस आती हैं। लेकिन भक्तों को क्या चाहिए, उसको क्या करें, सहन करना सीखें। इसलिए मार्ग पर पड़े हुए तृण का एग्जाम्पल लिया गया है और वृक्ष का एग्जाम्पल लिया गया है। तृण के ऊपर से कितने लोग चले जाएं लेकिन कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है ना। और वृक्ष को तो देना सीखा है, वृक्ष ने फल फूल इत्यादि छायाओं देता है, मरने के बाद लकड़ी भी देता है, ऑक्सीजन देता है ना। उसके बावजूद भी जब उसको काटा जाता है तो वो किसी प्रकार का प्रतियुत नहीं करता, अर्थात कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है कि मैं। तो ये जो क्वालिटीज बताई गई है ये इन चीज़ों में ऑलरेडी है। लेकिन हम इस श्लोक के द्वारा ये बताया जा रहा है कि भक्त को इस प्रकार की चेतना रखनी चाहिए कि वो बहुत विनम्र हो और सहनशील हो। क्या कारण है, क्योंकि भगवान को विनम्रता, विनम्र भक्त बहुत पसंद है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है, क्यों पसंद है, क्योंकि जो विनम्र होता है वो समझ लीजिए उसने साक्षात्कार कर लिया या उस भगवान के साक्षात्कार में काफ़ी बढ़ा चढ़ा है, अपने असली अस्तित्व को जानता है। आर्टिफिशियली कोई विनम्र बनने का प्रयास करे कुछ परिस्थितियों में बन सकता है, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हो सकता है कोई विनम्र बन जाए, गाली सुन ले, कोई उसको थप्पड़ मार रहा हो सकता है वो चुप रहे। लेकिन हृदय में रीज़न पूछें तो क्या था रीज़न, भाई गाली देने वाला व्यक्ति इसलिए था क्योंकि गलती उसकी स्वयं की थी, एक कारण हो सकता है। दूसरा, गाली देने वाला या मारने वाला व्यक्ति बलशाली था, अगर उसको वो गाली देता या उसको मारने की कोशिश करता तो उसको खूब पीट पीट के मार देता। तो विनम्रता का मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल विनम्रता नहीं, कि हम तो बहुत विनम्र हैं जी इसलिए नहीं बोलते। लेकिन जहाँ पर मौका मिल गया, जहाँ पर मैं बलशाली हूँ, जहाँ पर मैं क्रोध कर सकता हूँ, ये ज़्यादातर फैमिली में होता है। भक्तों के बीच में फिर भी शायद कुछ लोग कर ले, फैमिली में आकर हमारे विनम्रता का, सहनशीलता का बांध टूट जाता है, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं हम बड़े हैं, हम शक्तिशाली हैं। तो इस प्रकार विनम्रता, जो सच्ची विनम्रता है वो क्या है, जो कृष्ण भावना में पूरी तरह जुड़ा हुआ है, कृष्ण के ज्ञान को जानता है, वो व्यक्ति विनम्र रह सकता है, वो व्यक्ति सहनशील रह सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में वो एक श्लोक कोट किया था लास्ट टाइम भी, त्रिस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हतो, कि अगर किसी भक्त को शुद्ध कर दिया जाए वाणी से, उसको तिरस्कार किया जाए, उस पर प्रहार किया जाए, उसको मार दिया जाए, प्रयास किया जाए मारने का, अच्छा तो उस स्तर के भक्त क्या रहते हैं, वो विनम्र रहते हैं, तो भी सहनशील सहन करते हैं। हमने एग्जांपल भी ली थी जड़ भरत महाराज का, है ना, या प्रहलाद महाराज का। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल हैं कि जब भक्तों ने सहन कर कर दिखाया और ऐसी परिस्थिति में भगवान स्वयं आ गए रक्षा करने के लिए, तो इस प्रकार ये विनम्रता का और सहनशीलता का गुण हर भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि उसके जीवन में आए। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे आएगा, इसी श्लोक में आगे बोला है, अमान्य ना मान्य देन कीर्तनीय सदा हरि, कि अगर कोई व्यक्ति सदा कीर्तन करता रहता है, कीर्तनीय सदा हरि अर्थात हर समय वो अपने मन से वाणी से और कर्मों से कृष्ण के लिए काम करता है, कृष्ण का स्मरण करता है, कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, सततम कीर्तयन्तु, तो क्या होता है कि जब वो बार बार श्रवण करता है भगवान के पवित्र नामों का, तो वो कानों से प्रवेश करके उसका हृदय तुरंत साफ होना शुरू होता है। और फिर ये विनम्रता का गुण, सहनशीलता का गुण उसके अंदर अपने आप ही विकसित होने लगता है, या फिर जो विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं वही व्यक्ति पवित्र नाम का ढंग से जप कर सकता है, कीर्तन कर सकता है। तो ये गुण होने पर हरिनाम लिया जा सकता है, या हरिनाम लेते हुए ये गुण हमारे अंदर आ सकते हैं। तो इस प्रकार अमान्य ना मान्य दे, ये दो और बिंदु ऐसे हैं जो सीधा भक्त के जीवन से डायरेक्टली जो है संबंध रखते हैं, कि अपने मान की इच्छा ना करना और सदैव दूसरों को मान देना। तो इसमें अपने मान की इच्छा ना करना और दूसरे को मान देना, बताया जाता है कि हम लोग दूसरों को क्यों मान नहीं दे पाते, क्या कारण रहते हैं जिसकी वजह से हम लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, आज एक शब्द बता रहे थे मेंटल स्क्रिप्ट, मन में हमने ऑलरेडी किसी की फिल्म बनाई हुई है, तो इसलिए कुछ ब्लॉकेज हैं इस तरह के, स्टम्बलिंग ब्लॉक बोलते हैं, कि ये हम लोगों को किसी का मान करने के लिए रोकती है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं किसी के साथ, कुछ ऐसी हमारा अनुभव है किसी के साथ, खट्टे एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं, हमारे साथ है किसी और के साथ है, या उसके साथ है जिसे हम चाहते हैं उसका कोई व्यर्थ, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हमारी मान की इच्छा नहीं रहती। बेशक उसके अंदर सद्गुण हों, तो ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर सद्गुण भी हैं, अच्छे काम भी करता है, फिर भी हमारा मन उसके अंदर कहीं ना कहीं खोट निकाल ले देगा, कि हाँ ठीक है उसने ये कर लिया, लेकिन आप उसे जानते नहीं, तो कहीं ना कहीं लेकिन बट किंतु परंतु लगाकर हम ये दर्शाना चाहते हैं कि वो वास्तव में जो आपने देखा है, ये एक एग्जांपल हो सकता है, बट ये व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा कि। तो इसलिए कई कारण हैं, एक कारण है कि सबसे पहली बात कि हम लोग वही आत्म तत्व की बात करें, कि हम लोग अपने को शरीर मानते हैं, तो जब हम अपने को शरीर मानते हैं, इग्नोरेंस का एक सबसे बड़ा साइन है ये, अज्ञानता का। तो शरीर होने के बाद हम लोग कई बार सुंदर होते हैं, तो हमारे को अपनी सुंदरता का गुरूर होता है कि नहीं, तो इसलिए भी कई बार हम दूसरे व्यक्ति की सुंदरता को अप्रिशिएट नहीं करते। कई बार हमारे अंदर बहुत बुद्धि होती है और हम लोग कई कई सवालों को ऐसे जवाब दे देते हैं, अच्छे सजेशन दे देते हैं, अच्छे आइडियाज़ होते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो ये भी कारण बनता है कि हम लोग जो कम बुद्धि के लोग हैं, जिनके पास कम समझ है, उनको तो बिल्कुल सम्मान नहीं देते, ये सब तो जूनियर है मेरे, या कोई सीनियर भी हो अगर उसका एक्सपीरियंस कम है तो उसको भी हम लोग सम्मान देना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि मेरी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली मैं ज़्यादा कौशल वाला व्यक्ति हूं। कई बार धनवान, हमारे पास धन अधिक होता है, तो धन अधिक होता है तो क्या बनता है, ये भी कारण बनता है कि मैं झुकूं ना किसी के आगे, भाई ठीक है ये शुद्ध भक्त है लेकिन इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये शुद्ध भक्त है इसके पास गाड़ी नहीं है, तो हम लोग क्या, हमारा हृदय या हमारा धन हमें रोकता है कि किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए या किसी का मान सम्मान देने के लिए, तो ये भी आड़े आते हैं। श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में एक श्लोक आता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति, अर्थात कोई अगर बहुत अच्छे परिवार में कुल में पैदा हुआ है ऊंची कास्ट में, तो ये भी एक अवरोध बन जाता है कि वो दूसरों को सम्मान नहीं देता, रेस्पेक्ट नहीं देता, क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो ब्राह्मण कुल में पैदा हूं, तो इसलिए भी वो फील नहीं करता कि मैं किसी को रेस्पेक्ट। फिर बता रहे हैं कास्टिज्म आ गया, कई बार कलर आपको मालूम होगा विदेशों में बहुत ज्यादा है, काले और सफेद लोगों की लड़ाई होती रहती है। अमेरिका में आए दिन पुलिसमैन जो व्हाइट पुलिसमैन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी निगरों को पकड़ के शूट कर देते हैं या कुछ भी कोई भी बहाना लगा के जेल में डालते हैं, खूब प्रताड़ना देते हैं। तो रंग भेद, तो जो गोरे लोग हैं उनको लगता है कि हम ज्यादा वो हैं, भगवान के करीब हैं, या हम लोगों के ऊपर सारे अधिकार हैं, दूसरे लोग जो सुंदर नहीं है उनके ऊपर हम शोषण कर सकते हैं। तो इसलिए कई बार वो दूसरे लोगों को भी, दूसरे भक्तों को भी रंग भेद की नीति के द्वारा इतना अप्रिशिएट नहीं करते या सम्मान नहीं देते, या यूं कहें कि प्रचार करते वक्त भी कई बार हम लोग इन सब चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह है। कई बार हम लोग देखते हैं कि हम ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, मतलब ये जो काम है ये मैं आधे घंटे में करता हूँ, बाकी चार चार घंटे में करते हैं, तो इसलिए भी हम दूसरे को अप्रिशिएट नहीं कर पाते या सम्मान नहीं दे पा सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा कैपेबल हूँ, मैं ज़्यादा योग्य हूँ। तो मैं सेल्फ प्रेज जिसे बोलते हैं, आत्म प्रशंसा से भरा हूँ, तो इसलिए भी मैं किसी दूसरे व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहता। कई बार ये होता है कि हम लोग ऐसा भी फील करते हैं कि मैं तो बहुत सीनियर हूं, तो इसलिए मेरा हक नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति को मान सम्मान देना, सब मेरा मान सम्मान करें ये तो बनता है एटिकेट वाइज भी, लेकिन मैं किसी को सम्मान करूं ये ठीक नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, इतने सीनियर होके भी झुकते हो, इस्कॉन में तो हमने देखा जी आप भी झुकते हो वो भी झुकता है, ऐसा बोलते लोग। तो भावना क्या रहती है कि नहीं मैं भी दास हूं। तो कई बार सीनियर सीनियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हम तो बहुत पहले आए थे इसलिए ये तो कल के लोग आए हुए हैं, ये तो इन लोगों के लिए मेरे लिए नहीं, तो इस प्रकार से ये भी कारण बनता कई बार, इसलिए अभी ठीक है। और इसके अलावा कई बार हम लोग गुरु के या अपने सीनियर डिवोटी के मेंटोर के हमें लगता है कि वो हमें सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, या हम उनके सबसे ज़्यादा चाहते हैं, या वो हमारे बड़े क्लोज हैं या हम उनके बड़े क्लोज हैं, या क्योंकि वो हमारे यहाँ 10 बार प्रसाद पा चुके हैं इसलिए हमारा ज़्यादा अच्छा रिलेशन है, और कई बार मैं उनके साथ यहाँ भी गए हूँ वहाँ भी गए हूँ तो मेरी ज़्यादा चलती है, मेरी ज़्यादा सुनी जाती है, और लोग देखते भी इसी दृष्टि से। इसलिए ये जो नए नए लोग आ रहे हैं या जो दूसरे लोग हैं या जो और सीनियर हैं, मैं इनसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, इसलिए मेरा बनता नहीं है कि हर एक को मैं मान दूँ सम्मान दूँ, है कि नहीं। तो ये भी कारण बनता है। और कई बार हमारी आदत होती है, ये मटेरियल वर्ल्ड से आती आदत कि हम दूसरों का तिरस्कार करते थे या किसी को सम्मान नहीं करते थे, तो ये भी इनबिल्ट होती है, कई बार इस कारण से भी हम किसी को सम्मान नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़े सारे कारण हैं, इसके अलावा और भी कारण होंगे आप सब जानते हैं, कुछ अगर आपको लगता है बताइए। इसके अलावा ऐसे और कौन सी चीज़ है, जैसे ज्ञान, भगवत ज्ञान, इसका भी एक अलग अहंकार होता है, इसका ये भी एक कारण बनता है कई बार लोगों का दूसरों को मान सम्मान ना देने। एजुकेशन, ज्ञान, एजुकेशन, अचीवमेंट एंड पावर्स, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, अगर हमारे पास पोस्ट है, लिखे हैं वर्ड में, ज़्यादा कुछ आपसे पूछा था, पोस्ट इन पोजीशन, तो ये हमारे आड़े आती है किसी के भी आगे झुकने के लिए या किसी को भी सम्मान देने के लिए। हमें लगता है कि नहीं, जिस पोस्ट पर मैं हूँ उस पोस्ट वाले को झुकना नहीं चाहिए या सम्मान नहीं देना चाहिए किसी। लोग बने हैं मेरा सम्मान करने के लिए, मैं कैसे कर सकती हूँ। फिर पोजीशन में, मटेरियल पोजीशन में, जैसे स्पिरिचुअल पोजीशन हो, वो सारी पोजीशन रिस्की हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें, अब कहीं ना कहीं जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे बात करी, ये हमारे अंदर तो कहीं ना कहीं ये सारे गुण हैं ही ना। ये हमारे अंदर भी है, कोई सुंदर हो सकता है, कोई ज्ञानी हो सकता है, कोई धनी हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है। हमारे अंदर कहीं ना कहीं 5-7 के पास चीज़ें हैं ऐसी। तो वो कहीं ना कहीं ये कारण बनता है कि हम लोग दूसरे को सम्मानित नहीं कर पाते इसी वजह से। अज्ञानता तो वहीं से आ गया ना, आई एम बॉडी, मैं शरीर हूँ, तो शुरुआत ही यहीं से हुई है। ये उसके बाद है, ये सारे अज्ञानता के लक्षण प्रकट हुए हैं। आप ये बोल सकते हैं कि अननोइंगली, अनजाने में कई बार हम किसी को सम्मान नहीं देते। तो ये सारी चीजें, जिन चीजों की वजह से हम लोग इस विशेष गुण से दूर रहते हैं, जबकि कीर्तनीय सदा हरि की पोजीशन में पहुंचने के लिए हमें ये सारे गुण आने चाहिए हमारे अंदर। लेकिन ये जो चीजें हैं, कई बार हमें पता भी नहीं चलते हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इनके नुकसान क्या है कि अगर हम लोग किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, प्रॉपर सम्मान नहीं दे रहे, तो सबसे पहले हम लोग, आप लोग भी सोच लीजिए, मैं कुछ पॉइंट्स लिख कर लाया तो मैं बता रहा हूँ। जैसे कहीं ना कहीं सबके अंदर मान पाने की इच्छा होती है कि नहीं, सभी के अंदर होती है, कुछ ना कुछ गुण सबके अंदर ही। और इस संसार में फ्रुटेटिव मेंटालिटी के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर हमें कुछ गुण आए हैं, तो उन गुणों के बदले में कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन ना मिले तो ठीक नहीं लगता है। जितनी मेहनत करी और किसी ने, कहते हैं ना कई बार, अगर आपने अच्छा कपड़ा खरीदा है और 10 लोगों ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया तो कहते हैं बेकार है, तो और अगर 10-20 लोगों ने उसको अप्रिशिएट कर दिया तो आप कहते हैं पैसे वसूल हो गए, ऐसा भी सुनने में आता है, ठीक है ना। तो सुनना चाहता है व्यक्ति, तो ये मेंटेलिटी हमारी बनी रहती है कि हाँ मुझे मान चाहिए, मुझे पूछें लोग। तो पहला कारण क्या, पहला नुकसान क्या होता है, अगर हम किसी को मान सम्मान नहीं देते हैं यथावत, जैसा कि उसका योग्यता है, तो पहली बात तो क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है, तो हमने किसी के, हर व्यक्ति चाहता है कहीं ना कहीं, और हमने नहीं दिया तो उसी से नाराज हो जाएगा वो, है ना। कंपनी का मालिक को अगर कोई सैल्यूट नहीं मारता तो अगले दिन दिक्कत हो जाती है व्यक्ति, उसको लगता है कि मुझे, ये तो ऑब्वियस है कि आपको देना ही, मैं पैसे दे रहा हूँ तुम लोगों को तो आपको करना ही चाहिए इसे। तो फिक्स है उसका माइंड में कि हाँ ऐसा होना चाहिए इसे। तो अगर ये होता है तो क्या होता है, व्यक्ति बड़ा मायूस फील करता है, उसको सम्मान ना मिले अगर, या जिस तरह से वह चाह रहा था। जैसे भक्त लोगों के साथ तो समस्या तब आती है जब उनके द्वारा की गई सेवा के लिए उनको पूछा ना जाए कि प्रभु जी आपको पता है ये माता जी पूरी रात जो है ये करते रहे, तो अगर आपने नहीं पूछा उसको या नहीं बताया लोगों को तो माता जी अगली बार सेवा में नहीं है। अब प्रसाद बनाया, प्रसाद बहुत अच्छा बना है, लेकिन आपने अप्रिशिएट नहीं किया तो वो मेहनत बेकार जाएगी। तो हमारी आदत है सुनने की, हम चाहते भी सुनना, तो व्यक्ति मायूस हो जाता है कि अगली बार से मैं नहीं करूँगा ये सेवा, किसी और को दे दो ना, इतनी मेहनत भी करो, ऊपर से 4 गलतियाँ भी निकाल दो, तो अगली बार से आप ही कुछ छोड़ देख लो। तो ये जहन में क्या बोलते हैं उसको, स्टोर है ये चीज़ कि हाँ होना चाहिए ऐसे। और फिर अगर प्रॉपर सम्मान नहीं मिला तो क्या होता है, जिस व्यक्ति ने नहीं किया सम्मान उससे रिलेशन खराब हो जाता है, उससे ईर्ष्या हो जाती है, कमाल है इतनी मेहनत करवाई इसने मुझे, सब कुछ हमने किया और ये अकेला व्यक्ति क्रेडिट ले गया सर। तो हृदय से उत्साह खत्म हो जाता है सेवा और करने का, क्योंकि हमें हमारा द्वारा की गई सेवा का पारितोषिक नहीं मिला। मेंटालिटी गलत है ऐसा, लेकिन नुकसान बता रहे हैं कि क्या होता है जब कभी प्रॉपर सम्मान ना मिले किसी को। तो अमानी शब्द का जब हम बात व्याख्या करेंगे तो ये सारी मेंटालिटी गलत है ऐसा होना। ये अभी हम लोग एक न्यूफाइट डिवोटी की बात कर रहे हैं, जो वो इस वातावरण से गुजरता है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, और फिर वो उसके अंदर गलतियां भी ढूंढता है कि इसने सम्मान नहीं किया और ये अपने को बनता क्या है, है ना, इसके अंदर भी तो ये है, उसके अंदर भी तो ये समस्या है, और उसको डिफेम करता है, पता नहीं क्या समझता अपने आप को, खुद इतना करता है इतना बताते हैं, हम इतना करते हैं इतना बताते हैं, और इस तरह से ऑफेंसिव मेंटालिटी बन जाती है व्यक्ति की जिसको सम्मान सही ढंग से नहीं मिलता, क्योंकि वो उससे प्रसन्न नहीं होगा। तो जो पहला नाम अपराध है उसमें जो बात करते हैं छह प्रकार के अपराधों की, तो उसमें है वैष्णव को देकर प्रसन्न ना होना, वैष्णव से द्वेष रखना, तो ये दो तीन तरह के ऑफेंसेस तो शुरू हो गए। उसको प्रणाम ना करना ये भी आ जाएगा, क्योंकि अब आपके उससे बन नहीं रहे, समझ रहे मत। और फिर अन्य और सेवाओं में वो इतना कॉपरेट नहीं करेगा, जब वो ये भूल जाएगा कि ये सेवा मैं किसके लिए करता था, क्यों करता था, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, बस क्योंकि सम्मान नहीं मिला उसको यथोचित, तो उसका सेवाओं से भी वो निरुत्साहित हो जाएगा, कॉपरेशन बंद कर देगा, और कॉपरेशन बंद होने से वो सेवा सफर करेगी, अर्थात भगवान की सेवा सफर करेगी। और जैसे रिलेशन तो खराब हो गई होगा, और ये पता चलेगा हर व्यक्ति को, जो प्रोग्रेसिव डिवोटीज हैं जो ठीक प्रकार से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, कभी कुछ ऐसा होगा तो पता लग पाएगा उसको कि हाँ मेरा संबंध इस भक्त के साथ ठीक नहीं है, मेरे मन में या उसके मन में कहने की प्रॉब्लम चल रहा है। और इस तरह के मान के सेव और सम्मान का जो ये मान पाने की जो इच्छा रहती है, भक्ति सिद्धांत से मान वैसे तो बताते हैं कि क्या है, शूकरे विष्ठा, मतलब जो हम सब कुछ खाकर मल त्यागते हैं और सुअर उस मल को खाता है, और जो वो मल त्यागता है तो आप सोचिए कितना वो बदबूदार और कितना गंदा होगा। तो वैष्णवों के साम्राज्य में, वैष्णवों के वातावरण में भक्ति सिद्धांत श्री महाराज कहते हैं कि अगर किसी वैष्णव के अंदर मान पाने की इच्छा है तो किसके समान है वो, गधे के सुअर के मूत्र से स्नान करना, और व्यक्ति सोचिए इसमें बहुत अच्छा लग रहा हूं, नहीं वो इस प्रकार समझ लीजिए वो दूषित है, क्योंकि उसके हृदय में मान की इच्छा नाच रही है, डांस कर रही है, मुझे ये मिलेगा, मुझे लोग पहचानेंगे, लोग मुझे इससे जानेंगे, जब मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं ये पोस्ट मिल जाएगी, जब मैं ये सेवा कंप्लीट कर दूंगा तब मुझे पहचान मिलेगी, तब लोग मेरी बात मानेंगे, मैं सीनियर बन जाऊंगा, कब मैं प्रवचन करने लगूंगा, जब मैं प्रवचन करूंगा तो लोग मुझे प्रणाम करेंगे, मैं भी उनके जीवन में हस्तक्षेप करूंगा, हर जगह लोग मेरे आसपास घूमेंगे, सब लोग मुझे प्रणाम करेंगे, इस प्रकार की जो है इच्छाओं से या कामनाओं से वो ग्रस्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जब चीजों से ग्रस्त होता है तो इसका इसका बताया गया किसके समान है, ये शुक्र विष्ठ। तो व्यक्ति को तुरंत स्मरण होना चाहिए जब कभी मान की इच्छा हो कि ये क्या, मैं क्या इच्छा कर रहा हूँ, शुक्र की विष्ठा की इच्छा कर रहा हूँ, उसके मूत्र से स्नान की इच्छा कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जीवन कि मैं कोई कमी रह गई, कुछ कमी है अंदर, नहीं मिला मुझे पूरा जो मैं चाहता था। तो भक्तों के लिए बहुत बड़ा ये क्या है, डिजीज है। और फिर जो हम लोग ये सब करते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, जब मान सम्मान इत्यादि नहीं हुआ ढंग से, जैसे जब सारे ऋषियों ने एक बार भेजा था भृगु मुनि को कि आप जाओ पता करो कौन भगवान है, तो उन्होंने वाणी से कर दिखाया, मन से कर दिखाया, रेस्पेक्ट नहीं दिया। ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, बट उनको रेस्पेक्ट नहीं दिया, प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि कई बार हम मन से भी या वो करें ना करें, मतलब सम्मान चीज़ों का, तो क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति ऑफेंडेड फील करते ही करते हैं। ये हमें अपने जीवन में लागू करना है कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे को तो सदैव सम्मान देना चाहिए। जब दूसरे को सम्मान दे रहे हैं तब ये नहीं सोचना कि वो शूकर विष्ठा की मेंटालिटी, अर्थात वो क्या फायदा मुझे शूकर विष्ठा, आप क्या करोगे इसलिए मैंने नहीं दिया, ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। जी हाँ, हम लोगों के अपने शुद्धिकरण के लिए, अपनी भक्ति को बचाने के लिए, अपने अंदर सद्गुण लाने के लिए इस एटिकेट का पालन करना है, और जेन्युइन अप्रिसिएशन और सम्मान सदैव करना है। ना करने के क्या नुकसान है वो हमने बता दिया, मन खराब, रिलेशन खराब, एनवीनेस, ठीक नहीं लगे कुछ भी। तो भृगु जी ने जब नहीं किया ब्रह्मा जी को, और शिव जी को तो मुंह से ही बोल दिया है, क्या है राख लपेटे घूमते हो, गले मत लगाना, उनको भी कितना क्रोध चढ़ा। वो वैष्णव है, और वो वैष्णव जो है वैष्णव होते हुए भी उनको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, भाई हैं उनके, वो तो उनको क्रोध आ गया। इधर महाविष्णु भी लेटे हुए थे, और वहां पर जाकर तो उन्होंने प्रहार ही कर दिया है ना। और इस प्रकार मन से, वाणी से और कर्मों से क्या होता है, अपराध होता है, जब सम्मान नहीं करते। हो सकता है कि हम वैष्णव एटिकेट का पालन करते हुए तो सम्मान कर दें, किसी का प्रणाम कर दिए, सब कुछ करते, लेकिन हृदय ठीक नहीं है उसके प्रति, तो ये भी कारण बनता है, क्योंकि जो चीज़ हृदय में, मन में, और कल को वाणी में भी आएगी, फिर कर्मों में भी आएगी। तो इसलिए मन को अच्छा करना है सब भक्तों के मध्य। तो इसलिए इस प्रसंग में हमने बताया कि तीनों तरह से होती हैं लोगों की, लोगों का अपमान जिसे बोलते हैं, और फिर दक्ष प्रजापति का आता है। जब भरी सभा में वो गए तो क्या देखते हैं वो, कि सब उनको देख के खड़े हो गए, लेकिन दो लोग नहीं खड़े हुए थे, एक तो ब्रह्मा जी क्योंकि उनके पिता थे और सृष्टि के पहले व्यक्ति हैं, तो उनका बनता था ना खड़े, दूसरे शिव जी। अब शिव जी जो हैं वो उनके समकालीन लगा सकते हो, लेकिन शिव जी का स्तर जो है बहुत ऊंचा स्तर है, वो जीव तत्व में नहीं आते, और शिव तत्व ही अलग है। तो एक तो उस हिसाब से भी देखें उनका पोस्ट ऊपर है, और दूसरी बात शिव जी खुद बोल रहे हैं कि भाई मैंने उनको प्रणाम नहीं किया, या मैं खड़ा नहीं हूँ उनके उसके लिए, क्योंकि मैं तो सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहता हूँ, और दूसरे मतलब मैं तो उसी चीज़ में एंगेज रहता हूँ, अगर मैं नहीं हुआ तो मेरा कोई वैसा वो नहीं था। इसलिए इस प्रसंग में जब प्रजापति ने देखा कि शिव खड़े नहीं हुए, तो उन्होंने गुस्से में आकर इतना कुछ बोला शिव, और अपनी बेटी की शादी कराई थी, लेकिन फिर भी बहुत अपशब्द बोले उन्होंने। लेकिन यहाँ पर शिव त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुन का एग्जाम्पल सेट करते हैं, इतना कुछ उनको बोलने के बाद भी वो बहुत प्यार से सुन लेते हैं। अब शिव जी आशुतोष कहलाते हैं, एक क्षण में वो इतने क्रोध हो जाएं कि प्रलय ला दें, लेकिन इतना बोलने पर भी ससुर जी की बात सुन ली उन्होंने, ठीक है। तो इतना बड़ा अपराध हुआ। और इसके बाद शिव जी अपनी पार्वती को बता रहे, जब उसने बोला मैं जाना चाहती हूँ मायके, वहाँ पे यज्ञ रखा है, तब शिव जी कहते हैं कि जहाँ पर सम्मान प्रॉपर ना मिले तो वहाँ अवॉइड ही करना चाहिए जाना। फिर भी चली गई वो, लेकिन जब वहाँ जाकर देखा कि सच में उनके पति के लिए कोई सम्मान की वस्तु नहीं है, वहाँ पर उनका यज्ञ में सम्मान करने के लिए उनका स्थान नहीं रखा, उनका भाग नहीं दे रहे प्रजापति, तो इतने सारे लोगों के सामने उसको डिससपेक्ट महसूस हुआ शिव के प्रति, और उसको लगा मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। तो क्या किया फिर उन्होंने, अपनी देह को वहीं अग्नि लगा दी। जैसे एक प्रसंग आता चैतन्य महाप्रभु का, जब केशव कश्मीरी को हराते हैं उनकी गलतियां बताकर, बड़ी विनम्रता से बताते हैं और सारे बच्चे खूब हंसते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन महाप्रभु रोक देते हैं, नहीं नहीं कि हमसे इन बच्चों से ऑफेंस ना हो उनके प्रति, क्योंकि हैं तो वो भी सरस्वती के भक्त, तो डिसरिस्पेक्ट मत करो किसी को, रोक दे तुरंत। श्रीवास ठाकुर जी को डिफेम करने के लिए गोपाल चप्पल ने उनके यहाँ देवी माता का पूजा का सामान रख दिया और 3 दिन में उनको कोड हो गया इस घृणित कार्य से। तो जब वैष्णवों से द्वेष कर ईर्ष्या कर, क्यों? क्योंकि गोपाल चप्पल देखते थे यार रोज महाप्रभु आते हैं श्रीवास आंगन में, रात रात तक कीर्तन करते हैं हरिनाम संकीर्तन, दरवाजा बंद रखते हैं, हमें अंदर नहीं आने देते, ये कैसा कीर्तन चल रहा है, कैसे भक्ति हो रही है, इतने इतने चिल्ला के हरे कृष्णा। तो और श्रीवास जी का बड़ा मान सम्मान होता था कि इनका घर चुना महाप्रभु ने, तो द्वेष भावना से। तो यहाँ पर क्या आ रहा था, किस किस भाव से उन्होंने ईर्ष्या द्वेष करा, कि उनको फील हो रहा था मैं इन्फीरियर हूँ वो सुपीरियर हो रहे हैं, जबकि हम लोग ब्राह्मण हैं ये हैं और वो हैं। तो उन्होंने तुरंत कोई घटना कर डाली, सामान रख दिया उनके और फिर 3 दिन के अंदर को कोड हो गया शुद्ध भक्त के ऊपर। माधवेंद्रपुरी भी अपने मान सम्मान से बचने का प्रयास करते हैं, वैष्णव ऐसा चाहते हैं। तो जब स्वयं गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर का कसौला छुपाया था, ब्राह्मण को बताया जाओ तुम देकर आओ मेरे शुद्ध भक्त, तो क्या हुआ जब वहां पर पहुंचे माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी चिल्लाए और कहा देखिए तुम्हारे लिए भगवान ने एक खीर का कसौला बचा के रखा था। कहता भगवान ने, गोपीनाथ ने मेरे लिए खीर का कसौला? तो वो तो ब्राह्मण था, वो तो बड़े ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के बता रहा था, क्योंकि तो पहले तो कभी हुआ नहीं ऐसा, उसने शुद्ध भक्त का वो दर्शन कर रहा है। माधवेंद्रपुरी ने स्थान तुरंत छोड़ दिया वो कसौला लेकर, क्योंकि अब यहाँ पर क्या लोग बोलेंगे कि बड़े शुद्ध भक्त है, बड़ी प्रसिद्धि मिलेगी, बड़ा नाम होगा। तो माधवेंद्रपुरी ने स्थान को तुरंत छोड़ दिया। हम लोग कोई अच्छा काम कर दें, कोई सेवा कर दें, तो आखिरी तक इसलिए रुकते हैं कि पता चले लोगों को हमारा मान हो, सम्मान हो, नाम लिया जाए, और फिर हम कल को दिखाएं वो चीज़। कई बार सुनने को मिलता है कि प्रभु जी अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो हमारे लोग नाराज हो जाएंगे, जैसे जन्माष्टमी इत्यादि फेस्टिवल्स में कई बार लड्डुओं के पीछे लड़ाई होती है कि मुझे नहीं मिला, इनके 4 परिवार के लोगों ने सेवा करी, इनको नहीं मिला, मुझे और दे दो। अब वो सेवा का जो फल वो लड्डू के रूप में बदल गया। अब जब तक लड्डू नहीं मिलेगा तब तक मजे ही नहीं आए। तो एक लड्डू हमारी पूरी सेवा को क्या कर देता है, खराब कर देता है सेवा के सारे भाव को। रात को जल्दी उठे थे, सुबह खूब मेहनत करी थी, सुबह से लेकर शाम तक आए थे और फिर सब कुछ कर लिया, अब लड्डू नहीं मिल रहा, बताइए लाइन में खड़े हैं, लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, प्रसाद नहीं मिला, प्रभु ये क्या मतलब है, सुबह से अगली मैं नहीं आऊँगा, कागज छोड़ दें, ऐसे करते हैं लोग। तो हमारे इतनी मेहनत, इतना समर्पण, इतनी सेवा का हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, गुड़ गोबर कर देते हैं, श्रम एवं ही केवलम हो जाता है। सर्टिफिकेट पे नाम की स्पेलिंग ठीक नहीं, अरे भगवान तो नाम जानते हैं, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, मेरे को दूसरा दो। अरे खत्म हो गया, आ जाएगा। नहीं नहीं अभी चाहिए। कुछ भी, मतलब कहने का मतलब है इतना इमेच्योरिटी इसे हैंडल करते हैं ऐसी सिचुएशन को हम लोग, कि उसमें गुस्सा द्वेष ईर्ष्या आंसू सब दिखाते हैं, क्लासेस छोड़ देते हैं कई लोग। है क्या एक लड्डू? अरे तुम्हें नहीं मिल पाया, ठीक है, भाव ये होना चाहिए कि अरे सबको लड्डू मिला, भगवान का प्रसाद, चलो एक दाना मुझे भी मिल जाए, चाहे नहीं भी मिला किसी के एक लड्डू में से एक दाना भी मिल जाए तो माथे पे लगा, भाव ये होना चाहिए। नहीं खड़े हैं, दो दो घंटे खड़े हैं, इस हाथ में भी इतने, इस हाथ में भी उतने, गाड़ी में भी इतने, होता है। तो मतलब कहने का मतलब हमारी सेवा का जब पीछे ऐसा वो रहता है सर्टिफिकेट का या सामान का या ट्रॉफी का, तो हमें इस तरह की मेंटालिटी से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर सारे के सारे लोग यही मांग रहे हैं ट्रॉफी चाहिए, लड्डू भी चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए, और मुझे स्टेज पर बुलाया जाए और मेरा मान सम्मान हो, तो क्या होगा? इस मान की भावना से हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इतना कुछ करने के बाद हम लोग कह रहे हैं बस सब कुछ तो हो गया, सूकर की विष्ठा भी मिल जाती तो काम बढ़िया हो जाता, सारा गुड़ दो। तो कौन सीखेगा, कहाँ से सीखेगा, कैसे सीखेगा? अगर सीनियर लोग, काफ़ी लंबे समय से आने वाले लोग, दीक्षित भक्त अपनी सेवाओं के बदले पारितोषिक चाहेंगे, मान सम्मान चाहेंगे, तो नीचे के लोग भी, आने वाले लोग भी यही चाहेंगे, उनके लिए तो आप ही रोल मॉडल हैं, है कि नहीं? हम ही सीनियर भक्ति तो रोल मॉडल है, उसको देखकर सीखेगा। मंदिर में कोई भक्त आता है, वो देखता चार लोग ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, उसको कोई बोलता भी नहीं है, वो भी ऐसे प्रणाम करता है, सीखता है देखकर। देखता तिलक लगाते हो, तिलक ढूंढते कहाँ से मिलता है तिलक ऐसा वाला, कुछ को देखता शिखा रखे, शिखा रखता है, धोती कुर्ता पहन लेता अपने आप, कई बार बिना प्रीचिंग भी पहनता है। तो देखकर उसी तरह जब वो ये देखता है कि अरे इन्होंने सेवा करी, मुझे भी सेवा में लगाया, ये लड्डू के लिए खड़ा, मैं भी लड्डू के लिए खड़ा हूं, उसका नाम लिया, हमारा क्यों नहीं लिया? इतनी बड़ी जन्माष्टमी हुई, रथ यात्रा की गई बहुत बड़ी पंजाबी बाग, तो फाइनली एक सब कुछ खत्म हुआ, तो मैंने कहा चलो मैं उनको धन्यवाद करने जाता हूँ कि जिनकी वजह से रथ यात्रा निकली, इतने लोगों को फायदा हुआ। तो वहां पर वहां की उनकी टीम के पूरे लोग थे, बड़े बड़े लोग, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहीं पर भी कुछ भी करने पे 11-51 लाख रुपए ऐसे डोनेशन करते हैं। तो मैं जब अंदर गया तो एक लेडी थी और बहुत दहाड़े मार मार के रो रही थी, और वो लेडी बाद में पता चला वो निगम पार्षद थी। तो मैंने कहा भाई दो मिनट बैठा, मैं सबका हर सब ने मुझसे हरे कृष्णा करी, तो मैं बैठा, मैंने कहा सुनता हूँ क्या बोल रही है। तो वो क्यों रो रही थी कि जब स्टेज पर अनाउंसमेंट हो रही थी तो उसका नाम 3-4 लोगों के बाद लिया गया, इसलिए वो लेडी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। अब सोचिए, तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत खतरनाक डिजीज है, बीमारी, जो हमारी भक्ति को, हमारी सेवा को, हमारी साधना को, हमारे रिलेशंस को तबाह कर देती है, सम्मान की इच्छा, पारितोषिक की इच्छा। कुछ मिल गया ठीक है, भगवान की कृपा मान के रख लिया, लेकिन लड़ना नहीं है उसके लिए। खुद से शुरू करें और सीनियर लोग सीखें इसको, और फिर आगे सीखेंगे लोग, जब बोलोगे तो प्योरिटी इज द फोर्स। तो ऐसे बड़े सारे एग्जांपल, वो परीक्षित महाराज भी जब जंगल में गए थे पानी पी मांगा, तो श्रमिक ऋषि जी लगे हुए थे साधना में, ध्यान में लगे हुए थे, मरा हुआ सांप डाल दे गले में, ये चेक करने के लिए सच में है। एक छोटे बच्चे ने देखा और जाके श्रृंगी को बता दिया, उनके बेटे को, उसने वही श्राप दे दिया, 7 दिन के अंदर तक्षक से कटने से मृत्यु हो जाए परीक्षित महाराज की। जब ये खबर श्रृंगी की रोता हुआ जब अपने पिता के पास आया शमिक के पास, तो शमिक क्यों रो रहे, कहते मैंने ऐसे श्राप दे दिया राजा, वो आए थे आपको तुम्हारे गले में सांप, तो वो लड़ नहीं रहे हैं। शमिक जी अच्छा चल बेटा मैं भी एक दे देता हूँ लेट। हाँ उन्होंने क्या कहा, तुमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। क्या था, राजा थे, अब उनके गुणों को देखो, ऐसा धार्मिक राजा इतने अच्छे कुल परिवार से आ रहा है जिसने धर्म की रक्षा करी है पूरी जगह धर्म फैलाया, उसने अगर ऐसा कर भी दिया तो क्या बड़ी बात हो। फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगेट एंड फॉरगेट, भूल जाओ और माफ कर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने अब दे दिया श्राप। तो यहां शमिक जी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार दूसरों लोगों का जो हमसे ईर्ष्या करते हैं द्वेष करते हैं किसी कारणवश, उनके भी सद्गुणों को देखो, अगर मान लो उन्होंने कुछ गलती कर भी दी तो ठीक है ना। तो ये चीजें, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि अपने मान की भावना नहीं, कि मैं ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय राजा आया था, उससे तो मेरे पैर छूने चाहिए थे, गले में सांप डाल दिया, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो इन गुणों को देखना चाहिए। अगर हम लोग इस प्रकार करने का प्रयास करेंगे, इन गुणों को आत्मसात करने का पास करेंगे प्रयास करेंगे, सम्मान देने का प्रयास करेंगे दूसरों को, तो क्या फायदा है? सबसे पहला फायदा कि अगर हम लोग दूसरों को रेस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, तो पहली बात तो ये एक वैष्णव सदाचार का मुख्य अंग है, और हम जानते हैं कि गुरु और वैष्णव इत्यादि को अगर हम ठीक प्रकार से रेस्पेक्ट नहीं दे रहे तो ये ऑफेंस में आता है, जिसकी वजह से हमारी भक्ति माला सब चौपट होती है। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैंने सम्मान नहीं किया किसी का। सीनियर आते हैं तो खड़ा होना चाहिए। भागवत में कई जगह ऐसा, जब जब किसी सीनियर के आने पर, भगवान के आने पर, गुरु के आने पर लोग खड़े नहीं हुए तो खतरनाक श्राप मिले हैं। तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट वन शुड इमीडिएटली स्टैंड अप, और खड़ा होना चाहिए और रेस्पेक्ट करना चाहिए अर्थात प्रणाम करना चाहिए। ये बेसिक जो है क्या है, सदाचार है। और ये बेसिक सदाचार में और भी होता है, वैष्णवों को कहते हैं अगर तुम स्मरण भी कर लो, तेषां संस्मरणां पुंसा, अगर वैष्णव का स्मरण भी कर लेते हैं ना तो बदन सद्य कहते हैं उनके घर पवित्र हो जाते हैं। अगर आप शुद्ध वैष्णवों को का स्मरण भी कर लेते हो तो घर पवित्र हो जाते हैं, सद्य शुद्धन्ति वे गृहा, उनके घर शुद्ध हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं, फिर तो उसकी बात ही क्या की जाए, किसकी, कि उनका स्पर्श करना, उनको घर में बुलाना, उनको आसन देना, उनके चरणों को देना, इस काम की तो फिर मतलब उसका तो कितना ही फायदा है। खाली जिन भक्तों को स्मरण करने से घर शुद्ध हो रहे हैं, घर में बैठे बैठे। तो इसलिए एक वैष्णव सदाचार है कि हम लोग क्या करें, वैष्णवों का सम्मान करें। हम लोग सीखते हैं तीन प्रकार के भक्त हैं और यथोचित हमें सम्मान करना चाहिए, कनिष्ठ अधिकारियों का कैसे, मध्यम अधिकारियों का कैसे, उत्तम अधिकारी, या फिर यूं कहें कि हमारे साथ के हमसे सीनियर और हमसे जूनियर, तो कैसे देखें। अगर आपसे उम्र में बड़े हैं तो भी हमें सम्मान करना चाहिए। अगर दीक्षा हमसे पहले हुई है तो भी सम्मान करना चाहिए। और अगर ब्राह्मण दीक्षित हैं और भी अधिक सम्मान करना चाहिए। मंदिर में जीपीसी के द्वारा कोई पोस्ट प्रदान है तो सम्मान करना चाहिए, सबसे बड़े अधिकारी। और ये कुछ तरीके हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग देखेंगे अरे कहीं ना कहीं हर कोई हमसे सीनियर है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें सम्मान सब पे करना चाहिए। तो जो हमसे सीनियर हैं उनका सम्मान, प्रणाम, उनकी रेस्पेक्ट। जो हमारे साथ के हैं उनसे मित्रता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेस्पेक्ट ही सम्मान ना दें। सबसे ज़्यादा ऑफेंसेस साथ वालों में होते हैं आपस में, और फिर जो हमसे नीचे हैं उन पर करुणावश उनको भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास करना और मानसिक रूप से उनको सम्मान देना। अगर आप उनको बोर्ड ऑन नहीं, बोर्ड ऑन मतलब प्रणाम तो नहीं कर सकते जूनियर को, उनके प्रणाम के जवाब में प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से उनका सदैव सम्मान करना। और बताते हैं मोर यू गिव रिस्पेक्ट मोर यू गिव रिस्पेक्ट, अगर कहीं ना कहीं तो ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा भक्त के पीछे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, भागती है उसके पीछे। जब भक्त इसका कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, अमान ही ना मान है, मेरे को मान नहीं चाहिए, क्योंकि मान की इच्छा तो क्या है, सूकर विष्टा के समान है, मुझे नहीं चाहिए, मैं दूंगा बस, मुझे नहीं चाहिए। तो जब वो मांगता नहीं है तो ये आप उसको सम्मान अपने आप मिलना शुरू होता है, वो दूसरों को देता है लेकिन बदले में उसको खूब सम्मान मिलता है, खूब नाम होता है, लेकिन वो चाहता नहीं है। तो ये एक गुण है, लक्षण है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ कि हम जितना सम्मान करेंगे हम उतना सम्मानित होंगे, लेकिन कहीं पर सम्मान करने के पीछे मन में फिर ये आ गया कि हमको और सम्मान मिलेगा, ज़्यादा सम्मानित होंगे, तो ये भी गलत धारणा है। और फिर क्या होगा बेनिफिट, जितना अधिक आप लोग सम्मान करेंगे भक्त उतने ज़्यादा आपसे खुश होंगे, आपसे संबंध अच्छे होंगे, फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा, और आपसे द्वेषी आपके जो द्वेषी हैं वो कम होंगे या खत्म हो जाएंगे, आपसे ईर्ष्या या द्वेष रखने वाले। थोड़ा जोर से, हाँ वो पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपके हृदय में किसी के प्रति कुछ गलत नहीं है और आप सबके गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा देख के आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, और कहीं कोई गलती हो गया अनजाने में, मान लीजिए वो समझ जाएगा नहीं नहीं व्यक्ति ऐसा नहीं है, शायद कोई गलती रह गई। जैसे एक भक्त थे मेरे पास, एक भक्त को लेकर आए, ये पहले बताया कहते प्रभु जी आजकल वो आपसे बड़े नाराज चल रहे हैं। मैंने अच्छा क्यों, कहते क्योंकि शायद कभी उन्होंने, उनको ये लगता है कि आप उनको ढंग से ट्रीट नहीं करते या हरे कृष्णा नहीं करते। मैंने कहा भाई मैं तो प्रयास करता ही हूँ हर एक से, इवन मैं कभी किसी के घर भी जाऊँ तो मैं जो मेड भी होती है मैंने कहा मैं उसको भी हरे कृष्णा करता हूँ, क्योंकि उसको ये ना लगे मुझे निकृष छोड़ के हरे कृष्णा नहीं किया। कहते हैं हाँ मैंने देखा आप करते हैं, बट उनको ऐसा फील हुआ। मैंने कहा ठीक है किसी मिला दीजिएगा मैं माफ़ी मांग लूँगा, तो फिर माफ़ी मांगी। अब मान लीजिए कि दूसरी पार्टी है वो चाह रहा है कि ठीक है जी गलती है आपकी माफ़ी मांगनी पड़ेगी आपको, ठीक है तो भी मांग लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली भाव क्या होना चाहिए कि हमसे कोई ऑफेंस हो ही ना, जाने में भी अनजाने में। इसलिए जब चलते हैं, जैसे भगवान कृष्ण जब द्वारका में आए या मथुरा में एंटर किए, जब द्वारका में भी आए तो क्या किया भगवान ने, बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चे लेडीज और दूसरी लेडीज वाइफ इत्यादि सब भगवान को देख रहे थे, सब उनसे मिलना चाहते थे, उनका एक झलक देखना चाहते थे। तो भगवान ने क्या किया, किसी को हाथ हिलाकर हरे कृष्णा किया, किसी को हाथ जोड़कर किया, सबको अटेंड किया उन्होंने, किसी को साइड ग्लांस दिया, किसी के सर पर हाथ रखा, किसी को कुछ किया, हाथ मिला दिया। तो उन्होंने क्या किया, सबको नोटिस किया और सबको क्या किया, यथोचित सम्मान दिया। तो हमको भगवान सिखा रहे हैं इसे, चाहे हजारों लाखों लोग भी हैं छूटना कोई नहीं चाहिए। इसलिए आंखें हमेशा सदैव खोल के रखें कि कोई हमें प्रणाम कर रहा है या किसी ने हरे कृष्णा कर दी या आप किसी से बात कर रहे हैं किसी ने हरे कृष्णा करी। देखिए हम भगवान तो है नहीं कि चार आंखें हैं, ये चार नहीं मतलब हर जगह देख सकते हैं। प्रयास करें कि हमसे कोई गलती ना हो, अगर किसी ने हरे कृष्णा बोल दिया तो हरे कृष्णा कर लीजिए, टीचिंग करें प्रणाम नहीं कर सकते कोई हरे कृष्णा कर दीजिए, लेकिन प्रयास ही रहना चाहिए कि हमसे किसी का अनादर ना हो, अपमान ना हो, तो कम से कम द्वेषी रहेंगे अगर हम लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और बड़े पीसफुल रहेंगे माइंड्स, बड़े शांत रहेंगे, क्योंकि सभी वैष्णवों से आपका अच्छा संबंध है, कोई आपसे ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, एंड प्लेजेंट हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट या वातावरण तैयार होगा जहाँ पर आप अच्छे ढंग से सेवा कर पाएंगे, क्योंकि आपकी किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, गुरु ने जो आपको आज्ञा दी है आप उसको ठीक प्रकार से कर पा रहे हैं। और अगर ईर्ष्या द्वेष ज़्यादा है लोगों से, आप कोई भी सेवा बोलेंगे नहीं होगी, नीचे जाएगी नहीं, ये भी समस्या होती है। और एक ऐसा वातावरण तैयार होता है जिसे बोलते हैं कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, जब आप सबका मान सम्मान करते हैं, पापा उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, तो एक ऐसा वातावरण तैयार होता है और अन्य लोग देखकर इस कार्य को सीखते हैं। समाज में जनता संसार हर एक किसी की गलती निकाल रहे हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हैं, उनको दूसरी पार्टी की चाहे गलती है चाहे नहीं, अच्छा काम है चाहे नहीं, उसको क्या बोलना है, खराब बोलना है, ये उनको सिखाया जाता है या उनके खून में आ जाता है, इसलिए वो किसी भी अच्छे काम को भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, साइलेंस हो जाएंगे या उल्टे ही उसमें चार कमी निकाल के बताएंगे। जैसे गांव का बच्चा जब जज बन जाता है तो गांव का व्यक्ति कहता है पप्पू जज बन गया, कहता है नहीं हो नहीं सकता, कहते मैं जानता हूँ उसको, कहते हैं हाँ हाँ बन गया, कहते मैं भी देखा है यहाँ नंगा घूमता था, कहते भाई बचपन की बात है, कहते नहीं बट नाक पर बहती रहती उसकी, वो पप्पू तो बन ही नहीं सकता, कहते नहीं भाई बन गया जज, कहते मेरे को दिखा दिखा, कहते वो देखो ऊपर बैठे, अरे कमाल है, बाहर आ गया, सैलरी वैलरी नहीं मिलती होगी इसको। तो नहीं देना चाहते हम रिस्पेक्ट, तो हम लोगों को सिखा पाते हैं अगर वातावरण रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और फिर बताते हैं कि जितने भी डिवोशनल सर्विसेज के जो अंग हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि, इन सब सेवाओं को, डिवोशनल सर्विस को, भक्ति योग को हम ठीक प्रकार से कर पाएंगे अगर हम ऐसा वातावरण रखते हैं जहाँ पर हम सबको मान देते हैं और अपने मान की इच्छा नहीं करते। तो इस प्रकार की हमें प्रैक्टिस करनी है। और आखिर के 5 मिनट में ये सीखना है हमें कि इसको अप्लाई कैसे करना शुरू करें, लाइफ क्या इलाज है इसका, जिससे कि हम लोग दूसरे को मान दे सकें। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हम कितनी बड़ी पोस्ट में हों, हम कितनी बड़ी, हमारे पास बड़ी गाड़ी हो, कितने लोग हमारे अंडर में हों, कितने भक्ति विषय चला रहे हों, जो कितने पुराने डिवोटी हों, हर व्यक्ति को चाहिए कुछ ना कुछ वो मीनियल सर्विसेज भगवान की या बड़े भक्तों की जरूर करें। विनम्र सेवा, निकृष्ट सेवा जैसे बोल सकते हैं, या जो लो प्रोफाइल सेवा, वैसे सेवा सब बराबर होती है, लो प्रोफाइल इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि वो हमारी मेंटालिटी में, ये छोटी सेवा ये बड़ी सेवा, भाई स्टेज पर माइक पे बोलना एक हाई प्रोफाइल सेवा है, वीआईपी गेस्ट को वेलकम करना एक हाई प्रोफाइल सेवा है, लेकिन सड़क पे खड़ा होकर कागज बिनना एक लो प्रोफाइल सेवा है, लोगों के जूठे बर्तन इकट्ठे करना धोना एक लो प्रोफाइल सेवा लगती है, लोगों के जूते इकट्ठे करके रखना देखने में लो प्रोफाइल है, जबकि भगवान राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज के यहाँ पर सबके चरणों को धुलाने की सेवा ली, इसलिए भगवान को बोलते हैं षट ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, क्योंकि जहाँ उनके पास अपोलेंस सबसे ज़्यादा है, नेम फेम ग्लोरी सबसे ज़्यादा है, तो वो काम भी ऐसे करते हैं मीनियल सेवा कि मैं धुलाऊँगा सबके पैर। तो उसी तरह अगर हमारे पास सब कुछ है तो भी हमें क्या करना चाहिए, मंदिर में आके कुछ ना कुछ मीनियल सर्विसेज करनी चाहिए, जैसे कुछ भक्त लोग झाड़ू मारते हैं मंदिर में, कुछ लोग सफाई करते हैं, कुछ लोग शू सेवा करते हैं, अब कितनी कठोर सेवा है कि क्लास चल रही है और कुछ माताएं बच्चों को संभाल रही हैं, कितनी बड़ी सेवा है, हम तो क्लास सुन के आए, हमें तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा प्रवचन था, अच्छा तुम यहाँ तैयार, तुम्हारा जीवन खराब, अरे उसका बच्चों को संभाल के शुद्धिकरण हो जाएगा, और आपका ये बता के कि हम तो बहुत आगे बैठे थे, हमको तो बड़ा अच्छा हुआ, हमको तो बड़ा अच्छा लगा, उसको इन्फीरियर बना रहे हैं, अपने सुपीरियर दिखा रहे हैं, तो क्लास अंदर नहीं गई, कीटाणु चले गए दूसरे, है ना। तो सेवा के भाव को समझना और मीनियल सर्विसेज करना, भक्त लोग प्रसाद पा रहे हैं तो भक्तों को कैसे प्रसन्न करो, उनको सेवा प्रसाद पूछे क्या लाऊं प्रभु जी आपकी, पानी का उनके आगे ग्लास रख दिया, उनके लिए बैठने के लिए स्थान कर दिया, जैसे अभी कुछ भक्त लोग नहीं आए थे तो 2-4 भक्त यहाँ पर दरियाँ बिछा रहे थे, करना चाहिए जब समय मिल जाए, जब वो मिल जाए तो करना चाहिए, जैसे थोड़ी कि राजा की तरह आएंगे और सब कुछ हमारे आगे पीछे होगा, पहले फूलों की माला बनाई जाएगी फिर बैठे, नहीं, हर परिस्थिति में तैयार रहना और मीनियल सर्विसेज करना, ठीक है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो अहंकार सातवें आसमान पे है वो नीचे रहेगा, क्योंकि इस तरह की सर्विसेज सेवा कर कर हम लोग पहचान सकते हैं अपने आप को कि बस। दूसरा, क्यों वैष्णवों की सेवा करें, क्यों सम्मान करें उनका, उस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके हृदय में परमात्मा का वास देखना पड़ेगा, या शास्त्रीय दृष्टि चक्षु, शास्त्र चक्षु की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि हर एक के हृदय में क्या है, परमात्मा है, इसलिए भी मुझे हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करनी है, इसलिए भी हर व्यक्ति का सम्मान करना है, इसलिए हम चींटी तक का भी सम्मान करते, उसको मारते नहीं। क्या उद्देश्य है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के हृदय में क्या है, परमात्मा रूप में स्वयं भगवान खड़े हैं, जिनको आप मंदिर में पूजते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, जिनकी माला करते हैं, जिनकी आरती घुमाते हैं, वो व्यक्ति जिनको आप पूजा कर रहे हो, वो जो सामने खड़ा उसके भी हृदय में है। नहीं नहीं बट ये जो है ना, शायद इसके अंदर परमात्मा नहीं है, क्योंकि ये बंदा बड़ा गलत है। नहीं नहीं परमात्मा हर एक के अंदर है, हमारी दृष्टि खोट हमारे अंदर है कि हमें गलतियां देखती हैं। फिर भक्तों की अच्छे गुणों का व्याख्यान करना, उनको ग्लोरीफाई करना, खासकर विशेष कर जो करना चाहिए उनके आध्यात्मिक गुणों की, जो भी भक्त के अंदर गुण देखा उसकी चर्चा करें। जब गुणों की, सद्गुणों की चर्चा करते हैं तो सद्गुण हमारे अंदर आते हैं, और जब दुर्गुणों की चर्चा करते हैं तो दुर्गुण हमारे अंदर आते हैं। तो किसमें फायदा है, हम कौन से करते हैं, कहने के दुर्गंध दिखते हैं हमें, ये तो ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें पता चला, अच्छा ये सब बातों में। तो क्या करें, दूसरे भक्तों के सद्गुणों की चर्चा करें, वो गुण जो विशेषकर भगवान की सेवा में इस्तेमाल करता है। भागवतम में लिखा है कि जो लोग भौतिकतावादी लोगों के भौतिक गुणों को देखकर उसको ग्लोरीफाई करते हैं, तो ऐसे लोग गधे, घोड़े, ऊंट, सुअर के समान हैं। कौन लोग, नेता, सुपरस्टार, फिल्म स्टार, ये स्टार, वो स्टार, और उनके भौतिक कार्य को देखकर, क्रियाओं को देखकर उसको ग्लोरीफाई कर रहे, कुमार कर रहा है, तो किसके समान है वो लोग। तो हमें अगर किसी के गुण देखने हैं तो क्या गुण देखने, कि उसके अंदर ये गुण है और उसने भगवान की सेवा में लगाया हुआ है। मान लीजिए उसके अंदर भौतिक गुण भी है, प्रभु जी देखिए वो इतना है, बट स्टिल ये होते हुए भी भगवान की सेवा करता है। मतलब हमने देखा प्रभु जी कि वो व्यक्ति इस प्रकार भक्तों की, वैष्णवों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है, अपने से जूनियर की भी सेवा करता है, अपने साथ के लोगों को भी प्रणाम करता है, ये गुण दे। फिर अगर हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, हमारे अंदर कुछ गुण हैं जिसकी वजह से हम दूसरों को सम्मान नहीं कर पाते, तो उसके पीछे भी क्या देखना है कि इसमें कृष्ण का हाथ है, ये कृष्ण की कृपा है कि मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, ये कुछ अच्छा कर पाया, तो मुझे घमंडित या मुझे अहंकारित होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ। ये गुण तो भगवान के द्वारा दिए गए मुझे उनकी सेवा करने के लिए, तो इन गुणों के आधार पर मैं अपने को सुपीरियर समझ के दूसरे को इन्फीरियर समझ कर ये ना दर्शाऊं यस मैं कुछ हूँ या मैं शुद्ध भक्त। तो क्या रेमेडी है, अपने को निकृष्ट समझना, दीनहीन समझना, और जो गुण हैं वो भी किस लिए हैं, कि इस शरीर से, इस मन से भगवान मुझसे, गुरु मुझसे सेवा करवाना चाह रहे हैं, इसलिए गुण मेरे अंदर है। मेरे अंदर कोई गुण, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार शक्ति आशी, तुम्हारा करुणासार, कि भक्त लोग बोलते कि मेरे अंदर योग्यता विचार किया मैंने बट मेरे अंदर कोई योग्यता निकली नहीं, तुम्हारा करुणासार, कि तुम्हारी करुणा गुरुदेव, आप ही की करुणा की वजह से मैं ये कर पा रहा हूं। फिर क्या कहते हैं, कृपा बिंदु दिया। आप तो कृपा के सागर हैं, उसमें से एक बिंदु कृपा का बूंद जो है वो मुझे दे दीजिए। क्या होगा उससे? सकल सम्मान है, ताकि मैं सब लोगों का सम्मान कर सकूं। सकल सम्मान है करे तो शक्ति देह मोह यथायथ, ये मुझे शक्ति दो कि मैं सबका सम्मान कर सकूं। जब ये गुण आएंगे, इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा, और हृदय में सच में भाव ये है तो गुरु इस प्रकार की हम पर कृपा करेंगे। और भी वैष्णव भजन है जिन वैष्णव भजनों के द्वारा हम लोग वैष्णवों का गुणगान कर सकते हैं। ओहे वैष्णव ठाकुर, कितने वैष्णव भजन है। एक वैष्णव भजन में तो बोला है कि मैं उन सब वैष्णवों को मैं प्रणाम करता हूँ हाथ भुजा उठाकर, जो वैष्णव इस समय पूरी पृथ्वी पर है। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो हमारे संप्रदाय के हैं, दूसरे संप्रदाय के किसी, नहीं, जो भी है सारे वैष्णवों को प्रणाम करता हूँ। क्या नुकसान है? अच्छा, मैं तो अभी पैदा हूं ना, तो कुछ वैष्णव तो आके चले भी गए, तो मैं उन वैष्णवों को प्रणाम नहीं कर पाया जो आके चले गए, तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूं जो पहले आकर चले गए। लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो ऐसा थोड़ी वैष्णव खत्म हो जाएंगे, फिर भी वैष्णव आएंगे। तो मैं क्या करता हूं, उन वैष्णवों को भी प्रणाम करता हूं जो भविष्य में होंगे। मैं वृंदावन के वैष्णवों को प्रणाम करता हूँ, मैं मायापुर के वैष्णवों को प्रणाम करता हूँ, पूरी के वैष्णवों को प्रणाम, पूरे संसार के वैष्णवों को प्रणाम करता हूँ। तो भक्त का हृदय ऐसा होता है, वो किसी से दुश्मनी लेने नहीं चाहता, क्योंकि वो भगवान के धाम जाना चाहता है, वो भगवान की सेवा करना चाहता है। जो नहीं जाना चाहता, जो सीरियस नहीं है, तो उसके लिए मुश्किल होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार वैष्णव के हम लोग संबंधित हम लोग भजन को गा सकते हैं, याद कर सकते हैं। और दूसरे भक्तों में, वरिष्ठ भक्तों में, सामान्य भक्तों में, जो किसी भी भक्त में गलतियां देखना बंद करें। क्या करें? उनके अच्छे गुणों को देखें खाली। और क्योंकि जो फॉल्ट फाइंडिंग है, यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण हम दूसरों को सम्मान नहीं दे पाते। उसकी कमियाँ सबसे आगे पहले रिपोर्ट कार्ड आया था। जैसे डॉक्टर जब किसी पेशेंट को चेक करने जाता है, जब राउंड पर होता है, तो उसके पैरों के पास एक शीट रखी होती है, उसका नाम, उसकी डिजीज, उसकी समस्या सब पढ़ता है, उसके बाद बताता है क्या चल रहा है, क्या चल। तो उसी तरह हमारे पास भी क्या है, हर एक भक्त की एक क्या है, रिपोर्ट लटकी हुई है हमारे नेत्रों में ही है। ये भक्त ऐसा ऐसा, ये भक्त इससे जुड़ा, ये इतना ही करेगा, ये भक्त तो बिल्कुल गलत है, ये भक्त तो उस दिन, तो इस नज़रिए से देखते हैं, तो इस दृष्टि से देखने में हमारा नुकसान है। तो इस प्रकार गलतियां देखना बंद करें। और यही कारण है जिसकी वजह से हम लोग दूसरों को सम्मान नहीं कर पाते, और इसकी आदत बनानी पड़ेगी। मान लीजिए आपने किसी को देखा और पहले उसके बुरे कर्म आपके सामने आ गए, उसको इग्नोर करें, आप कहें चलो ठीक है, इसके अच्छे गुण देखने का प्रयास करें। और ऐसे संसार में कोई भी नहीं है जिसके अंदर अच्छा गुण ना हो, गंदे से गंदे आदमी के अंदर भी अच्छा गुण होता है, देखने के लिए प्रयास करना है बस। तो क्या करें, ऐसे भक्तों के अंदर अच्छे गुण देखें, जो आपको लगता है कि नहीं इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं, तो भी देखें, आदत डालें, रोज दो तीन भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको मिलता है, मिलने से पहले किसी न किसी भक्त का ग्लोरिफिकेशन कर डालो। आज मैंने बोझी इन भक्त को देखा, ये अभी तक सेवा कर रहे थे, वास्तव में बड़ा सेवा भाव है इनका। और अगर सामने वाला भक्त उस तरह का नहीं है, कहें तुम क्या बताऊं, वास्तव में ऐसा नहीं है, वो इसलिए इतनी देर तक कर रहा था ताकि वो ये कर लेता और वो कर लेता, तो ऐसे भक्त के सामने नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर दूसरे भक्तों को इसलिए भी रेस्पेक्ट करना है क्योंकि जब हम परमात्मा उनके हृदय में देख रहे हैं तो उनका शरीर क्या है, मंदिर के समान है। हम जो प्रणाम करते हैं एक दूसरे को, तो शुद्ध भक्त यही देखते हैं कि हर एक के हृदय में परमात्मा है, कृष्ण विराजमान है, तो हमारे हृदय से था गोविंद विश्राम, तो वो गोविंद को प्रणाम करते हैं, उस वैष्णव को प्रणाम करते हैं, या उसके शरीर को मंदिर मानते हैं जिसमें गोविंद विश्राम कर रहे हैं या भगवान विष्णु, तो इसलिए भी दूसरे को सम्मान देते हैं। बातें ज़्यादा बड़ी तो नहीं लग रही, किसके लिए, हमारे लिए, तो इसको अप्लाई करना शुरू करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सारे के सारे गुण, ये डूज और डोंट्स, ये अमानित्व का भाव कि मुझे माननी चाहिए लेकिन मैं दूसरों को सम्मान दूँ, ये कैसे आएगा? ये जो कारण बताए इस तरह आएगा, और ध्यानपूर्वक श्रवण करना, ध्यानपूर्वक हरि नाम लेना, ध्यानपूर्वक वैष्णवों की सेवा करना, अपनी जो घर में सेवा करते हैं वो करना, भक्तों के साथ डीलिंग, हर चीज ध्यानपूर्वक कॉन्शियस होकर। तो जब हम हर चीज को, हर सेवा को, श्रवण और कीर्तन को सबसे ज्यादा अटेंटिवली करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर आना शुरू हो गया चीज, आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ा। ये हम लोग इसलिए बोल रहे हैं इसे प्रयास कीजिए क्योंकि कई बार हमारा श्रवण और कीर्तन उस क्वालिटी का नहीं हो रहा होता, इसलिए इन सबको हमें मेहनत करनी पड़ती है हर चीज। तो भी क्या करेंगे, श्रवण कीर्तन पे भी पूरा प्रयास करेंगे, अटेंटिवली हियरिंग, चैंटिंग अटेंटिवली, और साथ ही साथ जो ये चीजें सीखी हैं इस तरह प्रयास करें तो निश्चित रूप से क्या होगा, तृणादपि सुनिश्चयेन, तृण से भी अधिक नीच मानेंगे अपने आप को और वृक्ष से भी अधिक सहनशील, और अमानित्व ना अर्थात अपने को मान की इच्छा ना देते हुए दूसरे को मान देना, फिर क्या होगा, कीर्तन या सदाहरि, ये करते ही व्यक्ति रुचि की स्टेज पर पहुंचेगा। रुचि की स्टेज मतलब जो इसके बाद का श्लोक है, ना धनम ना जन्म ना सुंदर, फिर व्यक्ति और कुछ किसी चीज की कामना नहीं करता, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु कीतु। ये निष्ठा का स्तर है, जो निष्ठावान है वो लोग तृण से वैदिक नीच रहते हैं, सहनशील रहते हैं, अपने मान की इच्छा नहीं करते, दूसरे को सदा मान देते हैं और सदैव कीर्तन करने में लगे रहते हैं या हर सेवा को अच्छे ढंग से करने पर। तो ये निष्ठा का स्तर है, तो हमें चाहिए कि हम स्तर पर पहुँचें। अभी हमारी स्टेज क्या है कि हम लोग अनर्थों से जूझ रहे हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया, पुरानी आदतों के कारण, मान सम्मान, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, मैं बड़ा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बड़ा सीनियर हूँ, मेरी दीक्षा पहले, इसी भाव से हम लोग दूसरों को सम्मान नहीं दे पाते। तो जो हम जब भी करते हैं फिर वो नाम अपराध में जब होता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम स्टेज पर पहुँच पाएंगे। समय हो चुका है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज अजय हरि को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये जो क्लास 8:30 शुरू होती है ये 8 से शुरू, तो हमने देखा कि 8:30 से शुरू करने पर भी लोग 9 बजे तक आ रहे हैं, तो क्या किया जाना चाहिए आप सब लोग बताएं। कितने लोगों को लगता है ऑनेस्टली कि 8 बजे तो आया जा सकता है, हफ्ते में एक दिन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगभग 80% लोग जाए, तो इसमें और 15-20 मिनट का वो करें, क्या करना बताइए। ठीक है, तो 8 बजे ही करना चाहिए, उसका क्या फायदा होगा। हाँ जी, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई गाड़ी आसपास से आ रही हो तो भक्तों के आपस में कांटेक्ट नंबर होने चाहिए, तो एक दूसरे को बिठा के लाने में मदद हो जाएगी, क्योंकि हर एक को अलग अलग गाड़ियां लाने में, एक ही व्यक्ति आ रहा है एक गाड़ी में तो वो भी ठीक नहीं, यानी कि कृष्ण के पेट्रोल है एनर्जी। पहले बनाना खाना या, हाँ थोड़ा प्रसाद का होता है तो थोड़ा सा और 10-15 मिनट की तपस्या कर लीजिए, आप लोग प्रयास कीजिए 8 बजे से, तो अगली बार हम लोग 8 बजे एकदम शुरू करेंगे। ठीक है, और प्रयास कीजिए कि सभी लोग टाइम से आएँ, फिर कोशिश करेंगे आपको सवालों तक घर भेज दें। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या जिज्ञासा तो नहीं होगी, होगी तो अलग से आके पूछ लेना, समय ज़्यादा होगी। धन्यवाद। Thank you.